ओम शांति। आज का टॉपिक है पश्चाताप की घड़िया। तो ब्राह्मण जीवन में जाने अनजाने कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं कि कभी पश्चाताप करना पड़ता है। तो पश्चाताप के बाद कुछ प्रायश्चित भी करने से जैसे अपने को दिलासा होता है कि प्रायश्चित करने से थोड़ा चुक्त हो जाएंगे हिसाब किताब, तो उस पर ही आज चिंतन करेंगे। जैसे बाबा ने एक अभी 11 तारीख की मुरली में बोला था, अल्बेलीपन की जो लहर है उसको समाप्त कर सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा हो। तो उस वर्धन से ये टॉपिक लिया हुआ है। तो उसमें बाबा ने कहा कि एक ने ठोकर खाई तो क्या दूसरे ने भी खाना चाहिए? अगर ठोकर खाते तो ठाकुर नहीं बन सकते। तो एक बार ठोकर खाई तो फिर ये समझदारी का काम नहीं है। तो समझदारी उसी को कहा जाएगा कि जिसने एक बार गलती कर ली या भूल कर ली वो दोबारा ना हो। इसी को ये बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ कहा है, एक बार की हुई भूल दोबारा ना हो। तो देखा जाता है कि जो भी पाप कर्म होते या कुछ गलतियां होती है, जब हम ज्ञान के चिंतन में या प्रभाव में नहीं होते उस समय होते, या जागृत अवस्था में नहीं होते उस समय ये विकर्म हो जाते या कुछ गलतियां हो जाती है, छोटे मोटे पाप हो जाते। तो बाबा ने कहा है कि जो भी कर्म करो, संकल्प करो, बोल, संकल्प बोल या कर्म, तो त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर के करो। ये बाबा ने कई बार कहा हुआ है, लेकिन हम वही अलबेलेपन की लहर में लहर जाते और ये भूल जाते हैं। तो बाबा ने यही खास कहा है कि जो भी संकल्प बोल है, कर्म है, वो समर्थ बन के करो। तो मूल फाउंडेशन है, जो गलतियां होती है, पाप हो जाते हैं, तो उसका है संकल्प। बीच तो संकल्प है, संकल्प समर्थ नहीं है इसलिए व्यर्थ में आ जाता है और जो हमारे कर्मों की क्वालिटी माना नीचे हो जाती है। तो जैसे बाबा ने कहा कि समर्थ संकल्प है तो व्यर्थ रह नहीं सकता, और जहां व्यर्थ है वहां समर्थ रह नहीं सकता। तो इसे देखने से यही आता है कि हमारा जो मूल है गलतियों का संकल्प है। तो हमको इसे ही अभी मजबूत करना है, संकल्प बोल और कर्मों को। बाबा ने कहा है कि कुछ ब्राह्मणों से जो गलतियां होती है, तो फिर गलतियां होती है तो फिर माफी मांगते हैं, माफी मांगना, फिर पाप करना, और जैसे परवश हो जाना, ये ब्राह्मणों की रस्म नहीं है, ये एक रस्म बना लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे पश्चाताप करना, ये भी एक रस्म बना लेते, ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम दिन प्रतिदिन बाबा की जो श्रीमत है, श्रीमत में भी कुछ मनमत मिला देते हैं और कुछ अवज्ञाएं हो जाती है। जैसे बाबा की पहली श्रीमत है कि याद में रहो, याद की यात्रा पर रहो, लेकिन हम कंटिन्यू कहाँ तक रहते हैं हमें ही पता होता है। तो याद की यात्रा कंटिन्यू चलती रहे। तो बाबा ने याद की यात्रा के लिए अनेक मार्ग बताए हैं, कैसे, जैसे कि अशरीरी बनो, बिंदु रूप बनो, बीज रूप बनो, पांच स्वरूपों का अभ्यास करो। तो विभिन्न युक्तियां बाबा ने बताई है कि कैसे मुझसे योग लगा रहे हैं, बाबा से कैसे लिंक जुटी रहे। तो अनेक तो विधियां बताई है, लेकिन उन विधियों में भी हम शायद सभी फॉलो नहीं कर पाते। तो मेन तो रोज की मुरली होती है, इस मुरली का ही अगर दिन भर चलता रहे तो भी याद बनी रहती है, लेकिन इसमें भी कभी कभी कच्चे हो जाते हैं याद की यात्रा में। फिर दूसरा होता है, दूसरा है अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया। जैसे याद की यात्रा में हमने परफेक्ट नहीं है दिन भर की दिनचर्या में, तो पश्चाताप होता है कि बाबा ने जो कहा था वो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो एक पश्चाताप होता है आत्मा को। हाँ, तो दूसरा है शक्तिशाली याद, अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया। तो शक्तिशाली नहीं बनाने के कारण माया वार करती है। तो देखा गया है कि अनेक रीति से, जैसे कमजोर संकल्प आ जाते हैं, कोई भी जैसे किसी ने कुछ बोला तो वहाँ हम स्थिति बिगाड़ देते हैं, यानी उस प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि कोई कुछ भी बोले हमें अपनी स्थिति डाउन नहीं करनी है। हाँ, अपने भी बिगाड़ देते हैं दूसरे भी। तो ये हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती और इसी के कारण भी हम क्या हो जाते हैं, पश्चाताप की लाइन में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि कई मुरलियों में कहा कि अभी पुरुषार्थ करने का समय अभी है और ये गोल्डन चांस है, आगे ऐसा चांस नहीं आएगा। जितना समय बीतेगा उतना परिस्थितियां आती रहेगी, उतना ही याद करने का जो तरीका है मुश्किल में आते जाएगा। तो पुरुषार्थ का समय अभी का है और अभी हमें करना है। तो अगर हम कुछ वेस्ट करते हैं समय, तो फिर समय हमें नष्ट कर देता है। जो समय को बचाता है उसको समय साथ देता है। तो मेन हम समय को कहाँ सदुपयोग करते हैं और कहाँ दुरुपयोग करते हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। अगर दुरुपयोग होता है समय का, तो फिर हमें पश्चाताप आता है। फिर बाबा ने कहा है कि पवित्रता की धारणा में कहाँ तक पक्के बने हैं, ब्रह्मचर्य की जो धारणा है उसमें दृष्टि वृत्ति कहाँ तक श्रेष्ठ बनी है। बाबा कई मुरलियों में चेक भी करते चार्ट, लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो फिर वो हमारा दिल खाता है कि हमने अभी तक ये नहीं किया है। तो फिर है इसमें पश्चाताप आता है। बाबा ने कहा है कि दुआएं दो और दुआएं लो, लेकिन हमें चेक करना है कि दुआएं कहाँ प्राप्त हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। तो दुआएं लेने का साधन है दूसरों की मदद करना, या दूसरों को अंधे की लाठी बन ज्ञान देना, सहयोग देना। तो ये कहाँ तक हम बाबा की आज्ञा पालन कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। नियम और मर्यादा, ब्राह्मण जीवन के जो भी नियम और मर्यादा बनी हुई है उन पर हम कितना चल पा रहे हैं, एक्यूरेट चल पा रहे हैं या नहीं। जैसे अमृत वेले से रात तक दिनचर्या बनी हुई है ब्राह्मणों की, लेकिन अगर कुछ दिनचर्या में बदलाव आते हैं तो फिर दिल खाता है, पश्चाताप होता है कि नहीं आज तो गड़बड़ हो गया है, नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ भी पश्चाताप होता है। फिर बाबा की निंदा अगर करते हैं, बाबा ने कहा कि बाप की निंदा करे तो उच्च पद पा नहीं सकते, ठौर नहीं पा सकते। तो बाबा की निंदा माना कुछ बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं, बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ये हो जाती है बाप की निंदा। और जो भक्ति मार्ग में निंदा की है हमने, कौन सी, सर्वव्यापी कहा भगवान को, कण कण में कहा, तो इसका तो इसका हिसाब वो तो थोड़ा माफ कर देगा बाबा क्योंकि उस अनजाने में किया था। तो इसमें भी पश्चाताप होता है हमें। फिर आलस्य अलबेलापन, आलस्य अलबेलापन, हम अलबेलापन में हम एक तो समय भी गवा देते हैं और जो भी समय शक्ति या सब व्यर्थ के खाते में चले जाते हैं। तो अपने आप को उमंग उत्साह में कैसे रखे, आलस्य नहीं आए, इसके लिए भी हम जोर देना है अपने पुरुषार्थ पर। तो आलस्य अलबेलापन नहीं आएगा और पश्चाताप से बचे रहेंगे। समर्थ बोल कहाँ तक बने, हम जो भी बोल बोलते हैं तो इसमें समर्थ कितने हैं, व्यर्थ कितने हैं, तो ये हमें जांच करनी है। अगर नहीं करते तो फिर पश्चाताप आता है कि बाबा ने जो श्रीमत दी कि दूसरों से अच्छे बोलो मीठा बोलो, लेकिन कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर हमें दिल खाता है, पश्चाताप होती है। बाबा ने कहा ये संगम युग है, मौजों का युग, तो मौज में रहना है, मूंझना नहीं है। तो मौज में रहने के लिए अनेक बातें बताई है बाबा ने, खुश रहना है, खुशी देना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, तो अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न ऐसी युक्तियां बताई है। तो मौज में रहना है, मूंझना नहीं है, तो अगर मूंझते हैं तो फिर पश्चाताप होता है। बाबा ने कहा कि परचितन परचिंतन प्रदर्शन परनिंदा से मुक्त रहो। बाबा जो धारणा दिए इनसे मुक्त रहो, लेकिन हम कभी कभी इनके भी प्रभाव में आ जाते हैं, कोई कुछ न्यूज सुनी तो फिर उसका ही चिंतन, उस चिंतन के प्रभाव में आ जाते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो उनका हम कुछ रस ले लेते हैं। परनिंदा, परनिंदा भी बहुत खतरनाक है, चुगली है, चुगली करना। तो इस पर एक कहानी है परनिंदा पर, कि एक राजा था, उन्होंने एक ब्राह्मणों का भोज रखा था और उसी समय अचानक एक गीद ने सांप को पकड़ के ऊपर से ले जा रही थी, और राजा के यहाँ भोज बना रहा था रसोईया, वो भी खुले में ही बना रहा था। तो जो सांप ने आत्मरक्षा के लिए गीत पर कुछ विस्की बूंदे डाली तो वो अचानक कहाँ गिर जाती है, हाँ, जो रसोईया भोजन बना रहा था वहाँ विस्की बूंदे पड़ जाती है, उसके कारण जो भोजन बांटा जाता है ब्राह्मणों में तो वो मृत्यु को पाल लेते हैं ब्राह्मण। तो ये तो बहुत बड़ा राजा से पाप होता है, ब्रह्महत्या का पाप लग जाता है। तो इसमें फिर यमराज मुन जाता है, दोष किसको देवे, गीत को देवे, सांप को देवे, या रसोईया को देवे, या राजा को देवे। हाँ, तो इस ये मामला उनका अदालत में अटका रहता है, यमराज की अदालत में। तो बहुत समय के बाद एक कोई राहगीर आता है राजा के दरबार में, तो उसको पता नहीं होता रास्ता, तो एक बुढ़िया मिल जाती है, बुढ़िया को पूछ लेता है वो राहगीर की राजा का दरबार में जाने की कौन सा है रास्ता। तो बुढ़िया बोलती है राजा के दरबार में जाना है, सावधान रहना, राजा भोजन में विष मिलाकर मार देता है ऐसा। तो उसको बहुत खुशी हो रही थी वो बुढ़िया को, कि वो राजा को, तो एक निंदा होगी एक प्रकार की। तो यमराज ने सोचा कि हाँ, मैं ये परनिंदा का जो दोष है ये बुढ़िया पर जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये परनिंदा है, दूसरों की निंदा करना, तो ये बहुत भी खतरनाक है, तो इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए, परचिंतन प्रदर्शन और परनिंदा। तो इस प्रकार ये अनेक है, बहुत सारी है, ढेर सारी धारणाएं जो बाबा ने मुरली में कही है, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते तो फिर हमारे जीवन में क्या होता है, पश्चाताप आता है। तो पश्चाताप कर लेते हैं तो पश्चाताप का भी कुछ तरीका है ढूंढने का, कि कुछ प्रायश्चित, हाँ, पश्चाताप अगर हो गया तो प्रायश्चित करो तो माफ हो जाएगा या कुछ पुण्य हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में भी इसके विधान है कि कुछ पाप हो गए हैं तो, हाँ, पाप हो गए तो उसको प्रायश्चित कुछ ऐसे कुछ कर्म करना है तो वो पाप नष्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ, जैसे नकली लेक पर जाते हैं तो मछलियों को कोई, हाँ, आटा खिलाते हैं, हाँ, गंगा जी गंगा स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन भंडारा कराते हैं। तो ऐसे अनेक विधियां हैं, तो उनमें से एक पहली विधि है दान करना। कुछ पाप हो गए तो पाप का प्रायश्चित करना है तो दान, दान तो दान जैसे भक्ति मार्ग में दान करते, दान पुण्य। और अभी ब्राह्मण जीवन में हमें कौन सा दान करना है? ज्ञान रत्नों का दान। तो दान देने से भी ये पाप से या कुछ गलतियों से माफी मिल जाती है। तो दान जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि किसी के हाथ से बिल्ली अगर मर जाती है तो सोने की बिल्ली बनाना पड़ता है। हाँ, भक्ति मार्ग में सोने की बिल्ली दान करो तो पाप से छूट जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे तो सोने की बिल्ली दान करने से भी पाप नहीं छूट पाएंगे। तो इस प्रकार ऐसे प्रायश्चित बनाए हुए भक्ति मार्ग में। लेकिन बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर है उपवास, उपवास करते हैं कि उपवास करने से भी पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो भारत में हिंदू धर्म में खास बनाए हुए एकादशी उपवास, सोमवार व्रत, अनेक सारे व्रत कथा बनाए हैं, अभी तक चलते ही रह ले चलते। हाँ, हर धर्म में भी होते हैं, लेकिन उपवास से ही जो अगर पाप भस्म होते तो अभी तक सब पाप मुक्त हो जाते हैं, तो उपवास से भी प्रायश्चित नहीं हो पाता। हाँ, मान्यता है। तो हमें कौन सा ज्ञान मार्ग में कौन सा उपवास करना चाहिए? ऊपर वाले के पास बैठ जाना है और व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातों से उपवास करना है, माना बुराइयों से बचे रहना है। हाँ, तो ज्ञान मार्ग की। फिर तीर्थ यात्रा करते हैं भक्ति मार्ग में। तो बाबा ने हमें ज्ञान मार्ग में कौन सी तीर्थ यात्रा बताई? चार धामों की यात्रा, याद की यात्रा, परम धाम की यात्रा। बुद्धि से बैठे बैठे हम यात्रा कर लेते हैं। तो चार धामों की यात्रा, बाबा कमरा, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, ये ब्राह्मणों के लिए खास तीर्थ स्थान है। फिर तप करते हैं। कोई भी कुछ गलती की है तो पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी कहते कि नहीं आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तो उससे मुक्ति मिल सकती है, पाप से मुक्ति। लेकिन अभी हमें ज्ञान मार्ग में क्या करना है? तपस्या। कुछ अपना कुछ ऐसा लक्ष्य बनाए, कुछ गलतियां अगर हो गई, पाप हो गए या छोटे मोटे अवज्ञा हो गई, तो ऐसा कुछ अपना ही प्रोग्राम बना सकते हैं। कुछ साधना जैसे 21 दिन का या कुछ घंटों का, तो उससे भी हम तपस्या में लीन रह सकते हैं। फिर भक्ति मार्ग में यज्ञ करते हैं, यज्ञ रचते हैं ना, उसमें जल, जौ, तिल का दान करते हैं, घी डालते हैं। तो और ज्ञान मार्ग में कमी कमजोरियों का दान करना है, मैपन को स्वा कर देना है, मैपन रहे नहीं, तो ये कमी कमजोरी हमें ये स्वा करना है, कोई भी अवज्ञा को दूर करने के लिए। फिर गंगा स्नान, जो आपने बताया गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा स्नान सभी जानते हैं कि गंगा स्नान से भी पाप भस्म नहीं होते हैं, सिर्फ शरीर का मैल दूर होता है, लेकिन जो पापों से मुक्ति है वो नहीं मिल पाते। फिर जाप करते हैं भक्ति मार्ग में, 108 की माला जो होती है, निरंतर अच्छा जाप चलता ही रहता है। तो हमें ज्ञान मार्ग में कौन सा जाप करना है? अंदर ही अंदर बाबा की स्मृति बनी रहे, बाबा के जो ज्ञान रत्नों से और सोमान की स्मृति में बने रहे। कोई कोई जैसे भक्ति मार्ग में जाते पंडित जी के पास, तो वो कहते कि आपको 108 बार प्रदक्षिणा करने पड़ेगी, कोई भी कोई मंदिर या कोई ऐसा कुछ पहाड़ी है उसका प्रदक्षिणा करना पड़ेगा, तो आपके पाप मुक्त हो जाए। लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में हमें कौन सी प्रदक्षिणा करनी है? सौदर्शन चक्र। सौदर्शन चक्र घुमाना है, माना पांच स्वरूप का स्वरूपों का अभ्यास। तो ये चक्र घुमाते रहेंगे तो माया का गला कट जाएगा, पाप मुक्त हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में कहते कि चालीसा पाठ करो हनुमान जी का, या फिर भागवत सप्ताह करो पाप मुक्ति के लिए कहा जाता है। लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में 40 दिन की तपस्या या 21 दिन की भट्टी, अपना अपना प्रोग्राम सेट करके कर सकते हैं। वैसे अपनी 3 दिन की भट्टी मुख्य है। फिर कई जो पंडित जी होते वो भक्तों को कहते हैं कि बाजोली करो आप, जैसे पिछले मुरली में आया था ना बाजोली का खेल। तो वो पलटी खाते खाते मंदिर तक जाते, या फिर कावड़ यात्रा करो, कावड़ी ये जो होते हैं वो कावड़ यात्रा करते कि जहां भी शिवलिंग है वहां गंगा का जल लेके जाते हैं, तो पद यात्रा उनकी चलती रहती है, तो इससे भी जन्म जन्मांतर के पाप से छूट जाएंगे ऐसा मान्यता है। काशी कलवट, काशी कलवट से पूरा बलि देते हैं, लेकिन अभी बंद हो गया है। लेकिन हमें कौन सी बलि देना है, मैपन की, मैं जो करते हैं मैपन की बलि। जैसे अभी बताएं मछलियों को आटा खिलाते हैं कि कुछ पुण्य हो जाए, हाँ मछलियों को आटा खिलाना, या चींटियों को आटा डालना, चिड़ियों को दाना पानी रखना, तो ये तो इसमें भी पुण्य मिलता है ये मान्यता है। और हाँ नागपंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते हैं। तो ऐसे अनेक प्रायश्चित करने की विधियां बनाई हुई है भक्ति मार्ग में, तो अभी वही विधियां हमें ज्ञान मार्ग में अप्लाई करनी है प्रायश्चित। तो ये तो अभी हम इस पर निष्कर्ष करेंगे कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होते। तो अगर हमने ज्ञान स्नान किया, 2 बार मुरली पढ़ी, तो पाप नष्ट हो जाएंगे, हाँ शुरुआत होंगी। कुछ दान पुण्य करेंगे तो, ज्ञान दान करेंगे तो, ये इसलिए है कि ये लिंक बना रहे हैं, बाकी इससे अगर गहराई से देखा जाए तो पाप नष्ट नहीं होगी। पाप नष्ट के लिए बाबा ने बोला है ज्वालामुखी योग, चाहे इस जन्म के जाए पूर्व जन्म के, जो संडे की मुरली में थी। तो ये तो एक सहायक है, ये जो भी प्रायश्चित करने के, जो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हम बना देते, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि इससे ही हमारी बुद्धि बिजी रहती है। तो मेन जैसे बाबा ने कहा कि लगन की अग्नि, अग्नि पैदा करो तो इससे ही पाप भस्म हो गए। चाहे किसी भी पूर्व जन्म के जो पाप है तो ये पाप भस्म से लगन की जो ऐसी ज्वाला पैदा करो तो इससे भस्म होंगे। और कुछ पाप जो है इस जन्म के हैं, जो अभी ज्ञान में आने के बाद हमसे जाने अनजाने हो ही जाते, तो वो बाबा को सब सुना दो, अपने अंदर कुछ भी नहीं रखो। तो इस प्रकार बाबा ने कहा है कि कोई भी पाप कर्म अगर होता है या गलतियां होती है तो उसका प्रायश्चित कर लेना है और अपने आप को फ्री करना है। तो इस प्रकार से ये पश्चाताप की घड़ियां कैसी कठिन हो गई उसके ऊपर बाबा ने कई मुरलियों में कहा है। बाबा ने कहा है कि पश्चाताप के आंसू भी आएंगे। हाँ, पश्चाताप की लाइन और प्राप्ति वालों की लाइन होगी, पश्चाताप की प्राप्ति। तो अंत समय में ये सबको आना है। अभी भी रोज तो आते ही है क्योंकि हम जो भी बाबा की आज्ञा है वो पूरी नहीं फॉलो किया, अवज्ञा किया, तो पश्चाताप होता है। तो ये छोटा मोटा होता है, लेकिन एक समय आएगा कि पूरे डिटेल में आएंगी। फिर जैसे बाबा ने कहा कि धर्मराज भी उस समय नहीं छोड़ेगा, धर्मराज पूरी, फिर चित्रगुप्त अपना पूरा दिखाएगा हिसाब किताब। चित्रगुप्त माना एक स्क्रीन लगेगी बाबा के बस उसमें पूरा हमने जो किया है वो पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, साक्षात्कार होगा और उस समय कोई माफी नहीं मिलेगी, उस समय सजा खानी ही पड़ेगी। तो उस सजा से अगर बचना है तो बाबा ने कहा है कि अभी समय को सदुपयोग करो और अपने आप को मतलब बचाओ। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज जो टॉपिक दिया हुआ है दुर्गति और सदगति का खेल, मुझे एक कहानी याद आ रहा है जो हम कभी सुना करते थे। एक बहुत बड़े संत थे, तपस्वी, तो उनको लक्ष्य था कि मुक्ति को पाना है। संत का चाहत था मुक्ति को पाना है और अपने शिष्य जितने भी थे उनको भी वो अपनी शिक्षाएं दे करके साधना में तल्लीन करते थे। एक दिन ऐसी वक्त आया कि उनका अंतिम घड़ी आ गई। तो अंतिम घड़ी जो आया था तब उनकी शिष्य पास में नहीं थी। अपने उद्यान में बहुत सारी फल लगे हुए थे और उस फल इतने अच्छे अच्छे थे कि उनको शरीर में पीड़ा बहुत हो रहा था, परंतु उनको एक अनार दाना में नजर गई और उनकी चाहत हुई कि मैं इसको खा लूं, परंतु देने वाला कोई नहीं था, ना ही वो उठ के जाके तोड़ सकते। तो वो देखते देखते ही उनका शरीर छूट गई। तो उन्होंने शिष्य को बोला था कि देखो, जैसे ही मेरा मुक्ति होगी, मंदिर में रहे हुए जितने भी शंखा घंटा नगरा जो भी है सब बजेंगे अपने आप। शिष्य आके देखे कि गुरु का अवस्था तो खत्म हो गया, मतलब वो तो शरीर तो छोड़ चुकी है, परंतु मंदिर का शंख घंटा नगरा बजी नहीं है, ये तो गलत हुआ। हमारा गुरु इतना अच्छे थे, उनका वचन कभी मिथ्या नहीं जाता, वास्तविकता क्या है। तो फिर उन्होंने एक बड़ा ज्योतिष को बुलाए और बोले कि हमारा गुरु ने ऐसी ऐसी बात कहा था परंतु हुआ नहीं, वास्तविकता क्या है। उसने अपने तप की बल से ध्यानमग्न होकर के उसने देखा कि गुरु क्या हुए है, शरीर तो छोड़े पर उनका शरीर क्या हुआ था, रूह शरीर छोड़ते छोड़ते फल खाने की नशा था, उनको चाहत था, तो उनकी रूह जाके एक अनारदाना में रहा हुआ जो कीड़ा जो फल खा रहा था उसकी शरीर में जाके प्रविष्ट हो गए। तो वही फल खा रहे, उस अनार को तोड़ो और तुम अपने गुरु की याद करो, उस कीड़े को स्पर्श करो, तुम्हारी गुरु तुम्हारा जो गुरु है वो मुक्त हो जाएंगे, तो ये बजेंगे। और ऐसे ही उन्होंने किया तो वास्तविकता वही हुआ, कीड़ा मिला और उसको स्पर्श किए और उसके बाद शंख घंटा नगरा सब बजने लग गया, अब गुरु मुक्त हुए। जो हमारा आज की टॉपिक है उसकी ये कहानी लगाने का प्रयोजन ये है कि जो हमारा सदगति है उसमें गति शब्द जो आता है, गति हमको मिलता है मति से। हमारा मति कैसा है, हमारा मति और हमको जो देने वाला मत कैसा है, उस पर मुझे हमारा गति होगा। सदगति हमको मिलता है श्रीमत से और दुर्गति होता है अनेक मतों से। अनेक मत में अगर हम जाएंगे, मन मत में रहेंगे, मन मत में भी खराब वाला मत हमारा बुद्धि में है तो हमारा सदगति नहीं होगा। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम अंतिम घड़ी में तुम्हारी क्या अवस्था होता है, तुम्हारी मन में क्या सोच आता है, तुम्हारा बुद्धि कहाँ जाके टिकता है, बस तुमको वही मिलने हैं। अब ऐसे ही कई कहानियां हैं। एक राजा था बहुत बड़ा और उसको धर्म कर्म करता था, बहुत अच्छा था, तपस्वी था, परंतु एक मृग में उसकी दिल गई मरते मरते। मृग उसको अच्छा लगा तो बाद में जाके फिर मृग योनि में गया और फिर उसमें ही उसको फिर चुकाना पड़ा हिसाब। ऐसा कई सारी कहानी हम सुनते हैं। तो हमारा ये जो सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र में हमारा दो ही खेल चलता है, एक तो हमारा सदगति, दूसरा है दुर्गति। सती की दुनिया और त्रेता युगी दुनिया जो है उसमें हमारा सदगति ही होता है, उसमें हमारा वैसा दुर्गति नहीं होता। और जैसे हम द्वापर युग से कलयुग के अंत तक जब तक परमात्मा का श्रीमत नहीं मिलता तब तक हमारा दुर्गति होता ही रहता। क्यों दुर्गति होता? क्योंकि हमको पता नहीं है वास्तविकता करना क्या है न करना क्या है, तो इसी वजह से हम दुर्गति में गिरते जाते हैं। और परमात्मा जो खुद आकर जब हमको सही रास्ता दिखाते हैं तब हमको सदगति मिलता है। तो ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं फिर इसमें आने के बाद भी क्या होता है, दुर्गति और सदगति होता रहता है, सूक्ष्म है ये सब चीज बातें। तो हम दुर्गति और सदगति की ये जो खेल है इसको खेलना तो है ही है, हर एक को दुर्गति होना है और सदगति होना ही है। परंतु अब हमको श्रीमत मिला है, परमात्मा हमको मिला हुआ है, हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो हमको दुर्गति न हो, हमको सदगति हो। भक्ति मार्ग में कहा जाता है जो पाप करता है वो दुर्गति को पाता है और जो पुण्य करता है वो सदगति को पाता है। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है? हम जिसको पुण्य समझ रहे हो सकता हो हमारे से पाप हो रहा हो। भक्ति में हमने कई सारी ऐसा गलतियां कर दिया है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा दुर्गति होता रहता है। अभी भावना की भाड़ा तो मिलता है, अलग बात है। जैसे देवी की मंदिर में जो अनजान पशु को बलि देना और जो कई सारी चीज़ें होता है उसको हम वेस्ट कर देना भक्ति के नाम में, उससे हमको जरूर कहीं ना कहीं नुकसानी होता ही है और उसकी फिर दुर्गति हमको प्राप्त होता है। अनजान पशु को बलि चढ़ाना जो हम भक्ति में करते हैं उससे क्या होता है, हम देख सोचते हैं पुण्य होता है परंतु पुण्य तो नहीं हो रहा है, उल्टा हमको बोझ चढ़ता है, दुर्गति होता है। इस तरह की सूक्ष्म जो पाप है या प्रत्यक्ष पाप है जिसको भक्ति मार्ग में पुण्य माना जा रहा है वो पाप बनता है और हमारा दुर्गति होता है। तो ये दुर्गति और सदगति की खेल की जो चक्रव्यूह है, जो हमारा ये 5000 साल का जो पूरा चक्र में आधा दुर्गति आधा सदगति और दुर्गति से सदगति की ओर हम अभी जाने वाले हैं। तो परमात्मा हमको शिक्षा दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, उसके आधार में हम अगर अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं तो हम फिर सदगति को प्राप्त होते हैं। तो हमको दुर्गति में ले जाने वाला क्या है, रावण का मत है। रावण का मत मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो मत है उसमें हम फंस जाते हैं तो फिर हमारा दुर्गति चालू हो जाता है। द्वापर युग जैसे ही चालू हुआ तो सबसे शुरू में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जैसे ही अटैक हुआ तो हमारा दुर्गति फटाफट होने लग गया। और ये कलयुग की अंतिम संगम युग की घड़ी में आके बाबा ने फिर हमको ज्ञान दिए, श्रीमत दिए कि तुम जिस चीज़ को अच्छा मान रहा था, जिस चीज़ को सृष्टि चलाने की साधन समझ रहा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये वास्तव में क्या है, तुम्हारा दुश्मन है। इससे सबसे पहले तुम अपने को बचा लो। ये सदगति यहाँ से अब हमारा चालू हो जाता है। परमात्मा का जो श्रेष्ठ मत है इससे हमारी सदगति चालू होती है। अनेक मत में जाना दुर्गति और एक श्रीमत में आना सदगति। परमात्मा मत में चलना हमारा सदगति है और हमारा मन मत, मन में जो इच्छा आया जो आकांक्षा हमने वही कर दिया वो हमारा दुर्गति है। इस दुनिया में परमात्मा बाबा ही एक ऐसा है जो हमको सदगति के रास्ते पे ले जाते हैं। बाकी रावण हर हमेशा दुर्गति की रास्ता ही देता है, रॉयल रीति से आता है और वो थोड़ा बहुत की कमाई चट कर देता है और फिर दुर्गति में धकेल देता है। कई बारी हमारा सदगति में चलते चलते ही पैर फिसल जाती है फिर दुर्गति में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान मार्ग में आ गया मतलब उसका अभी सदगति होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही श्रीमत के उल्लंघन होगा फिर दुर्गति को प्राप्त हो ही जाएगा। तो ज्ञान मार्ग में जैसे हम आ जाते हैं और ज्ञान मार्ग में आने के बाद शुरू शुरू में नशा चढ़ता है, हम अच्छे से मुरली पढ़ेंगे, योग करेंगे, अमृत वेला करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो हमारा चढ़ती कला का समय होता है, सदगति की ओर हम जा रहे हैं। परंतु उसी वक्त भी क्या होता है, थोड़ी सी माया का झलक आ जाती है और हम देखते हैं इतना बड़े जो इतनी पुराना है वो तो उतना मुरली सुनता नहीं है, चिंतन करता नहीं, मुझे भी क्या पड़ी है, मैं भी थोड़ा तो छोड़ दूँ, तो फिर क्या होगा, दुर्गति चालू हो गई। दूसरों को देखना, दूसरों को जैसे ही बात करेंगे तो क्या हो जाता है, दुर्गति चालू हो जाती है। मत मतलब जो मत अंदर जो मत चलती है यार, दूसरों से जो मत मिलती है उससे हमारी गति अभी उड़ती कला से नीचे गिरती कला की तरफ चला जाता है। तो जैसे कोई सेवा हमको मिलता है, सेवा मिलता है, हम सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद उमंग उत्साह आता है और फिर क्या हो जाता है, सेवा में थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। देखो मैं इतना सेवा करता हूँ, मेरे से अच्छा सेवा कोई करता नहीं है, मैं तो सबसे अच्छा हूँ, ये अपने अंदर में आना, फिर क्या हो जाता है, उससे अभिमान आ जाता है, सेवा का अभिमान, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं जितना कोई नहीं करता, तो फिर वो गिरा देता है। सदगति होते होते फिर दुर्गति की तरफ चले जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं कि समझ में नहीं आता हमको, हम सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं पर वो अच्छा सोच हमको फिर अभिमान में ला के फिर गिरा देता है। जैसे मुरली है हमारा रोज का खजाना, मुरली पढ़ना सदगति, मुरली छोड़ देना दुर्गति को प्राप्त होते जाना, अमृत वेला उठना सदगति को प्राप्त होना, अमृत वेले छोड़ देना धीरे धीरे ज्ञान योग की चिंतन छोड़ देना फिर दुर्गति को प्राप्त होते जाना। तो अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। सबसे मेन चीज क्या है, हम जितने भी योग तपस्या कर रहे, साधना कर रहे, ज्ञान की चिंतन कर रहे, इस सभी का एक ही लक्ष्य है कि अंतिम वक्त में, अंतिम समय में हमारा बुद्धि उस एक चीज में टिक जाए, परमात्मा शिव बाबा, उसकी ही याद हमारी बुद्धि में रहे और उसकी ही चिंतन करते करते हमारा शरीर छूटे, शरीर में जितने भी दुख दर्द तकलीफ हो परंतु उसकी याद हो, ऐसा न हो कि उस पंडित का जैसा ही उस अनार की दाना याद आया और अनार खाने की दिल हुई और शरीर छूटी। अभी कलयुग की ये समय है, अभी तो ऐसी कोई तपस्वी भी नहीं मिलेगा कि वो आत्मा कहाँ जाके भटक गई, कहाँ जाके रुक गई। अभी ये दुनिया कैसा है, अभी डिजिटल दुनिया है, हमारा बुद्धि कितनी सारी जगह पे भटक जाती है। गूगल से सर्च करने से मिलता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीजें है गूगल रूह तक पहुंच नहीं सकता। अब कितनी सारी फेसबुक खोल के रखा है, व्हाट्सएप है, हाँ यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट खोल रखा है, बाय चांस शरीर छूट गई और कहीं याद आई हुई चीजों को, तो फिर किसी के शरीर में प्रवेश करके फिर वो चलाना पड़ेगा ना। कोई इंटरनेट चलाता होगा फिर उसी शरीर में प्रवेश करके फिर अपना साइट सर्च करना पड़ेगा, चैनल चलाना पड़ेगा, कितनी दुर्गति को प्राप्त होंगे। अभी आत्माएं जो शरीर छोड़ती है और दूसरों को तंग करती है ना, क्यों करती है, क्योंकि यही चीजों में उसकी बुद्धि फंस जाती है, क्योंकि खोल रखा है, चला रखा है, अभी फिर मुक्ति तो मिलेगी नहीं, तो कहाँ जाएंगे, किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो आके चला के चली जाएगी। क्योंकि इच्छाएं आत्माओं का पूर्ति नहीं होती है, इसलिए कभी भी कहीं भी टच होके वो चलाती है अपनी, फिर अपना दिलासा पूरा करके चली जाती है। दुनिया में अभी ये वक्त आने वाला है, नया शरीर मिलना नहीं है उतना जल्दी, तो फिर कहाँ जाएंगे, भटकेंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि ऐसी अच्छी अवस्था बनाओ, अपने ओरा को इतना अच्छा बनाओ जो कोई टच ना कर सके। तो अभी ज्ञान मार्ग में भी हम चल रहे, पर ये कई सारी चीजों को हमने क्रिएट करके रखा है, तैयारी करके रखा है, तो हम उसमें उलझ न जाए। उस पंडित की समय तो था, उसकी दाना में गया, अनार दाना में गया, अभी की समय में तो हमारा बुद्धि दूसरी दूसरी चीजों में जाएगा, जहां पर हमारा धन होगा वहां पर हमारा मन होगा। बाबा कहते हैं ना, जहां तुम्हारी धन होगी वहां तुम्हारी मन होगी, इसलिए बाबा बोलते हैं मेरे में धन लगाओ, तन लगाओ, मन लगाओ, सब कुछ लगाओ, तो फिर तुम्हारी बुद्धि वहीं जाएगी और तुम्हारी सदगति होगी। नहीं तुमने दूसरी दूसरी चीजों में रखा है स्नेह, तो तुम्हारी स्नेह उधर जाएगी, तो तुम्हारी दुर्गति होगी। जिसकी कोई नहीं है संसार में उसका सब है, और जिसका कोई एक स्पेशल है उसका कोई भी नहीं है, इसलिए स्पेशल एक परमात्मा बाप हो तो हमारा बुद्धि भटकेगी नहीं और हमारा सदगति होगी। ये दुर्गति और सदगति की खेल में हमको आना ही पड़ता है, और ये एक हिसाब से क्या है, बनी बना है, जिसकी जितनी पार्ट है उतना तो होना ही है, परंतु बाबा कहते हैं ना, एक बड़ा ड्रामा एक छोटा ड्रामा होता है, और तुम अपने छोटे ड्रामा को अच्छा करते जाओ, बड़ा ड्रामा जो है उसको रहने दो। और ऐसा भी नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसमें तरक्की नहीं हो रहा है इसका मतलब हम असफल है, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा का जो सूक्ष्म मशीनरी है उसमें हमारा हर चीज बातें नोट होता है। हमको लग रहा होगा कि हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, हो सकता है उसकी नज़र में हम पुरुषार्थ कर ही रहे होंगे। कई सारी आत्माओं का ऐसा लगता है कि योग नहीं लग रही है, अच्छा है कि उसको योग नहीं लग रही, क्योंकि वो मेहनत करेगा। जिसकी योग लगेगा और उसमें अभिमान आने लग जाएगा और वो छोड़ देगा फिर एक दिन धीरे धीरे। जिसको नहीं लगता है उसको कम से कम नहीं लग रहा है उसके सोच में थिंकिंग में तो है ना, तो अभी वो मेहनत करेगा। और जिसको लग रहा है लगता है उसको अच्छा लगता है, हो सकता और ही कुछ हो रहा हो, और ही कुछ हो रहा हो, उसको कहीं भ्रम हो रहा हो। भ्रम की संसार में तो हम नहीं जी रहे, भ्रम में जीना मतलब दुर्गति में प्राप्त होना। और ज्ञान में जीना, समझदार होके चलना, ये सदगति की रास्ता है। भ्रम, अज्ञान, अंधेरा, ये सभी दुर्गति की तरफ ले जाता है। और जिसमें जितना नॉलेज है, जितना समझ है, वही उसको सदगति की तरफ ले जाता है। तो सदगति प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठ श्रीमत में चलना है, रावण की मत से दूर रहना है, श्रेष्ठ संग में रहना है, ज्ञान की चिंतन करना है, अपनी जो रोज की जो साधना है, दिनचर्या है, उसको उसी प्रमाण चलाते रहना है। हो सके तो स्पीड बढ़ाओ, नहीं हो सके तो कम से कम 20-30 की स्पीड में कम से कम गाड़ी चलाते रहो, रुकना नहीं चाहिए। जो हम कहानी सुनते हैं ना, एक खरगोश था, दूसरा कछुआ था। कछुआ चलता रहा, मंजिल पर पहुंच गया। खरगोश का स्पीड बहुत था, उसने सोचा अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, मैं तो थोड़ा सो जाता हूँ, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहुंच ही जाऊंगा। पर पर वो मंजिल में पहुंच नहीं पाया। सोने की बात जो है योग भी सो जाती है। तो इसलिए हमको इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो जितना हो सके सदगति की ओर ही हमको जाना है, तरक्की करना है। इस मार्ग में हम आए हैं तो हमको दिन प्रतिदिन कम से कम 1% बढ़ाते जाए, ग्राफ नीचे ना आए, इसको ध्यान रखना है। ग्राफ कैसे नीचे आता, कैसे ऊपर जाता, वो तो उसके लिए तो पोता मेल रखना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा। रोज शाम को सोते समय दिन भर मैंने क्या किया, किस तरीके से अपना दिनचर्या चला, वो सब चेकिंग करेंगे, पोता मेल रखेंगे, तो हमारा वो चढ़ती कला की तरफ जाएंगे। अगर हमने अपने को चेकिंग ही नहीं करा, कुछ अता पता ही नहीं मेरे से क्या हो रहा है, कुछ हमने लिखा जोखा ही नहीं करा, तो फिर हमको धीरे धीरे गिरती कला, उतरती कला की तरफ हम चले जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है तो हम चढ़ती कला की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो फिर उतरती हो जाती है, दुर्गति की तरफ चले जाएंगे। और मेन चीज़ जो है रोज चेकिंग करना है। और मेन चीज़ जो है कि सदगति हमको वही दे सकता है जिसको सब कुछ पता है, सृष्टि की आदि मध्य अंत की जिसके पास में नॉलेज है, वही हमको सदगति दे सकता है। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा मनुष्य नहीं जिसको इस सृष्टि का आदि मध्य अंत को पता हो, किसी में भी ये नॉलेज नहीं है, ना तो साइंटिस्ट में है, ना तो दूसरे कोई साधु संन्यासी में है। सभी बोलते थे पहले नेति नेति, पता नहीं हमको साधु संन्यासी बोलते थे, पता नहीं नेति नेति बोलते थे। अभी साधु संन्यासी क्या बोलने लग गए, मैं सब कुछ हूँ, शिवोहम बोल के बैठने लग गए, शिवोहम। तो फिर गड़बड़ होने की बात ये हुआ। इसलिए हमको शिवोहम, मैं खुद ही शिव हूँ, ऐसा नहीं, मेरे से बड़ा कोई तो है। और जो बड़ा जो है, जिसको सब कुछ खबर है, सब कुछ पता है सृष्टि के बारे में, वही हमको सदगति दे सकता है, बाकी सभी दुर्गति में ही ले जाने वाले हैं। इसलिए उस एक की ही अगर हम मत में चलेंगे, उसने दिखाई हुई राह पे चलेंगे, तो हमारा सदगति होता जाएगा, नहीं तो फिर हमारा दुर्गति होगा। और दुर्गति और सदगति का जो खेल है, ये सब मत में ही आधारित है। श्रीमत श्रेष्ठ मत से हमारी सदगति होगी, मन मत से हमारी दुर्गति होगी। इसलिए मत, अब अंदर में अपना जो मत चलता है वो भी है, और दूसरे से मिलता है मत वो भी है, और इस मत के आधार से हमारा गति चलता है, गति बनता है। तो ये मत अच्छा मिलना चाहिए, और जिसको सब कुछ पता है उससे ही अगर हम मत लेंगे, उसके ही सहारे में हम चलेंगे, तो फिर हमारा जरूर सदगति होगी, और हमारा दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होता जाएगा और हम इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे जा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।